शुक्रवार 16 सितंबर का नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। समाजवादी पार्टी की लड़ाई में शिवपाल यादव ने फेंका अपना पासा, दिया मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा। सत्ता संघर्ष की बात से अभी भी इनकार, लेकिन पार्टी में थोड़ी चिंता। आजम खान बोले,
नुकसान शब्द तो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिक्रमंद जरूर है।
और सांसद तारिक हमीद कर्रा हुए पीडीपी से अलग, कहा कश्मीरी अवाम का किया जा रहा है नरसंहार।
तो हमने अपने जमीर की आवाज को सुनते हुए दोनों बेसिक मेंबरशिप फ्रॉम द पार्टी एज वेल एज मेंबरशिप फ्रॉम द पार्लियामेंट, हम दोनों से आज रिजाइन किए।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कल देर रात अखिलेश मंत्रिमंडल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। 13 सितंबर को शिवपाल के करीबी अधिकारी माने जाने वाले मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटाए जाने के बाद अखिलेश और शिवपाल के बीच तल्खियां बढ़ गई थीं। इसके बाद अखिलेश को यूपी इकाई अध्यक्ष पद से हटाकर शिवपाल को यह पद सौंपा गया, तो इसके बाद अखिलेश ने शिवपाल से कई महत्वपूर्ण मंत्रालय छीन लिए थे। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने सीरिया में 4 दिनों से संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद मानवीय सहायता नहीं पहुंचा पाने पर गुस्से और बेबसी का इजहार किया है। विशेष दूत इस्तेफान द मिस्तूरा ने सीरियाई सरकार पर वादे के मुताबिक अनुमति पत्र नहीं मुहैया कराने के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रपति असद के सहयोगी रूस का कहना है कि सरकारी सैन्य बल एलेपो शहर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों से हट गए हैं। रूसी सेना ने कहा है कि अगर विद्रोही बल कासिलो रोड से खुद पीछे नहीं हटते हैं तो सरकारी सेना अपने स्थान पर वापस लौट सकती है। रूसी सेना के प्रतिनिधि विक्टोर पोंजिखिर ने कहा, सीरियाई सशस्त्र बल अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं और कासिलो रोड से सैन्य उपकरण और अधिकारियों की वापसी शुरू कर दी है। विक्टोर पोंजिखिर के शब्द। अब इसकी संभावना बनी है कि तुर्की की सीमा पर इंतजार कर रहे संयुक्त राष्ट्र का सहायता काफिला विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी एलेपो में जा पाएगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के उपराष्ट्रपति लुइस इनेशियो लुला डी सिल्वा का कहना है कि वे और उनकी वर्कर्स पार्टी देश के सत्ता प्रतिष्ठान के लगातार चलाए गए अभियान की शिकार बन गई है। अपने खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उन्होंने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। लुला ने अभियोजकों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए हैं। अभियोजकों ने कल कहा था कि लुला सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार के सरगना थे। अमेरिका से मिली रिपोर्टों के मुताबिक अधिकारी डुइश बैंक से $14 अरब का भुगतान करने को कहेंगे। ये कार्रवाई साल 2008 में आए वित्तीय संकट के समय ऋण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है। बैंक पर आरोप है कि उसने अपने मॉर्गेज बॉन्ड की गुणवत्ता को लेकर निवेशकों को गुमराह किया, जिसके बाद प्रॉपर्टी के दामों में बेतहाशा उछाल आया जो ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। वहीं ड्यूश बैंक का कहना है कि इतनी बड़ी रकम के भुगतान का उसका कोई इरादा नहीं है, जो अमेरिका में किसी भी विदेशी बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना होगा। जापान की रक्षा मंत्री ने कहा है कि विवादित दक्षिण चीन सागर में जापान अमेरिका और क्षेत्रीय देशों की नौसेना के साथ बहुपक्षीय अभ्यास करेगा और संयुक्त प्रशिक्षण गश्ती दल के जरिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाएगा। बीबीसी समाचार।
सभी सुनने वालों का मेरी यानी फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। यूं तो झगड़ा खालिस सियासी है, मामला है कि तू बड़ा कि मैं, लेकिन लोगों की जबान पर फिर से मनमोहन देसाई की फिल्म चाचा भतीजा का वो गाना क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा एक बार फिर से आ गया है। और आए भी क्यों ना, आखिर मामला भतीजे अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच राजनीतिक दंगल का जो है। कल देर शाम चाचा शिवपाल यादव यानी मुलायम सिंह के छोटे भाई ने अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, साथ ही उन्होंने प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद से भी खुद को अलग किया। पूरे मामले पर नज़र बनाए रखी है हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने, सुनिए लखनऊ से उनकी रिपोर्ट।
दिल्ली और लखनऊ की बैठकों के सिलसिले के बाद कल शाम जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई तो ऐसा लगा कि परिवार का सियासी संकट फिलहाल टल गया है, लेकिन देर रात अचानक शिवपाल के इस्तीफे ने पार्टी में एक बार फिर तूफान पैदा कर दिया। सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को तब हुई जब शिवपाल ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। क्योंकि कुछ देर पहले ही इस जिम्मेदारी को भली भांति निभाने की बात उन्होंने मीडिया से कही थी।
सब लोगों को देखिए, नेताजी का जो भी आदेश होगा और जो भी जहां भी जिम्मेदारी नेताजी जहां पर भी देंगे वो सभी को निभाना है। अब हमें जिम्मेदारी मिली है संगठन की प्रदेश अध्यक्ष बना करके, तो हम उस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएंगे।
उधर इस खबर के बाद से ही शिवपाल के घर उनके समर्थक कार्यकर्ताओं विधायकों का तांता लग गया। शिवपाल ने बाहर निकलकर उन लोगों से मुलाकात की और शांत रहने की अपील की। इससे पहले गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। जानकारों का कहना है कि परिवार के नेताओं की बातचीत में इस पर सहमति हुई कि इन सब के पीछे जो लोग मुख्य भूमिका निभा रहे हों उन पर कार्रवाई हो और कैबिनेट में शिवपाल के छीने हुए विभाग उन्हें वापस किए जाएं। समझा जा रहा है कि आज परिवार और पार्टी के बीच होने वाली अहम बैठक में इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन उससे पहले ही शिवपाल के इस्तीफे से इन आशंकाओं को और बल मिल गया कि अखिलेश यादव झुकने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेता अमर सिंह पर आज कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यादव परिवार को करीब से जानने वाले इटावा के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शाके कहते हैं,
ऐसी ही बातें सामने निकल करके आई हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, वो किसी ऐसे राजनेता के ऊपर हो सकती है। जैसा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि बाहरी व्यक्तियों का दखल सरकार और परिवार में किसी भी शक्ल सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अब वो बाहरी व्यक्ति कौन है इसको बड़ी आसानी से प्रदेश के लोग उसको समझ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसको आसानी से आंक सकते हैं।
यादव परिवार में सियासी संकट के पीछे अमर सिंह के होने की आशंका दो दिन पहले खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही जताई थी। हालांकि उन्होंने उनका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन शक की सुई अमर सिंह की ओर ही गई और अमर सिंह ने इस बारे में मीडिया को सफाई देकर शक को और गहरा कर दिया था। यही नहीं, कल लखनऊ में पहले रामगोपाल यादव और बाद में आजम खान ने भी इस बात के संकेत दिए थे।
नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना जरूर जानते हैं कि जिसने भी ये किया है, और जब नाम लिया नहीं है सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर कोई साहब क्यों परेशान है, चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है, चोर क्यों खुद से बोल पड़ा।
बहरहाल शिवपाल यादव ने मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा जरूर दे दिया है और आज ही उन्होंने सरकारी बंगला खाली करने का भी ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके सुलह की उम्मीदें अभी बनी हुई हैं, क्योंकि पार्टी की सदस्यता उन्होंने अभी नहीं छोड़ी है। अब सबकी निगाहें आज की बैठक और उसमें मुलायम सिंह यादव के फैसले पर हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
समाजवादी पार्टी अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का सत्ता संघर्ष या कोई राजनीतिक उठापटक जारी है। वात्सल्य राय ने बात की समाजवादी पार्टी के सीनियर मुलायम सिंह के करीबी समझे जाने वाले आजम खान से।
देखिए, परिवार के हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं है उस परिवार से, लेकिन समझा ये जाता है कि हम भी उस परिवार का एक हिस्सा है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपसी रिश्तों में पैदा होती हैं, और आपने देखा होगा सीएम साहब ने ये कहा था कि ये सरकारी झगड़ा है, पारिवारिक झगड़ा नहीं है, और अगर है तो कुछ बाहरी लोगों का कारनामा है। उनका जैसा कल रहा है जैसा माजी था। अगर बिच्छू का काम डंक मारना है तो बिच्छू डंक मारेगा, आप चाहे कितना ही उसको समझा लीजिए। सांप का काम डसना है, आप लाख दूध पिलाइए लेकिन सांप डसेगा। तो मैं जहाँ कह रहा हूँ आप भी समझ रहे होंगे
जी, लेकिन आप नाम नहीं ले रहे हैं उस बाहरी व्यक्ति का, ना मुख्यमंत्री जी ने लिया।
इस काबिल नहीं समझता।
लेकिन मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा जो सभी लोग सवाल कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष तो सीधे इस झगड़े को लेकर सलाह भी दे रहा है। मायावती कह रही हैं कि आपकी पार्टी के जो नेताजी हैं मुलायम सिंह यादव को संन्यास ले लेना चाहिए। राहुल गांधी इलाहाबाद में कहते हैं कि अखिलेश ने साइकिल का पहिया ही निकाल के फेंक दिया। तो इस तरह से आपकी पार्टी को तो नुकसान हो रहा है।
नुकसान शब्द तो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिक्रमंद जरूर है। जहाँ तक मोहतरमा का सवाल है, वो दौड़ से बाहर है, और संन्यास मुलायम सिंह जी लें इससे पहले मोहतरमा को सोचना चाहिए कि उनको जो राजनीतिक संन्यास जनता ने दिया है अब से 4.5 बरस पहले, उन्हें उस पर ज्यादा विचार करना चाहिए। अपने साथियों के बारे में जो बहुत ही करीबी थे, बड़े भरोसेमंद थे, जिस तरह से छोड़ कर गए हैं और जो जो इल्जाम लगा कर गए हैं, उसके बाद उन्हें थोड़े से दिन शर्मिंदगी में गुजारने चाहिए थे। राहुल जी को साइकिल नजर आने लगी, अब तक तो उन्हें नजर ही नहीं आती, हमारे सीएम का नाम भी नहीं लेते थे, बच्चा बताते थे, अब बच्चा भी दिखने लगा, बच्चे की साइकिल भी दिखने लगी।
परिवार की बात बाहर आ रही है इसीलिए लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है अटकलें?
मेरे ख्याल से कल इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इंतजार करें, कोई कटुता नहीं है, एक राजनीतिक सोच है। बहरहाल सीएम इज आफ्टर ऑल सीएम, और वो उनके अधिकार में है, वो किसे मंत्री रखें किसे न रखें। अब इस पर जहां भी कहीं कोई ऐसा फैसला हुआ है जिस पर पुनर्विचार हो, नेताजी का आदेश तो सभी मानेंगे, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। नेताजी कुछ कह दें और वो उस पर अमल ना हो, नेताजी ने अभी कुछ कहा ही कब है, वो कहेंगे तो वही होगा जो वो कहेंगे।
अब हर कोई ये कह रहा है कि नेताजी जो कहेंगे उनकी बात मानेंगे। पहले शिवपाल यादव ने भी वही कहा था और अखिलेश यादव ने भी कहा था कि उन्होंने जो कुछ किया है वो नेताजी के कहने से कुछ किया और कुछ अपने फैसले भी लिए हैं। यहाँ भी आज़म खान कह रहे थे सांप और बिच्छू से किसी का की तुलना कर रहे थे, हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा बार बार इस तरफ जा रहा है कि अमर सिंह की तरफ, ये हर आदमी का इशारा है कि अमर सिंह को बाहर निकालने की बात हो रही है। खबर में कुछ इस कदर चाशनी है कि जाहिर है कि अखबार और मीडिया इससे चिपके हुए हैं, इसलिए आज अखबारों की समीक्षा के लिए हम चल रहे हैं लखनऊ समीर आत्मज मिश्र के पास। हम ज़्यादातर दिल्ली से करते हैं अखबारों की समीक्षा। समीर, अखबार में भी ये खबर 70 के दशक की जो वो हिट फिल्म चचा भतीजा उसकी तरह हिट है या कहीं नीचे है?
बिल्कुल फैसल साहब, उसी तरह से हिट है सारे अखबार। जाहिर सी बात है कि उनकी लीड खबर यही रहेगी, देर रात ये खबर भी आई है। हालांकि राहुल गांधी की यात्रा की चर्चाएं भी हैं अखबारों में, लेकिन बहुत कम जगह मिली है उनको, अंदर के पेजों पे ही जगह पाई है। अमर उजाला लिखता है नाराज शिवपाल का इस्तीफा, पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा सियासी संकट। अखबार ने राम गोपाल यादव के हवाले से लिखा है कि सपा की बर्बादी पर आमादा अमर सिंह। वहीं दैनिक जागरण की हेडिंग है शिवपाल बागी संकट में सपा। अखबार ये भी लिख रहा है कि चार्ज लेने से कन्नी काट रहे हैं मंत्री, यानी जो शिवपाल यादव के जो विभाग लेकर के जिन मंत्रियों को दिए थे उनकी उस मंत्रालय का चार्ज संभालने की हिम्मत अभी नहीं पड़ रही है। उनको ये लग रहा है कि कहीं शिवपाल फिर पावर में आ गए तो उनके खिलाफ ना वो हो जाए। इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है राउंड वन इन समाजवादी फैमिली गोज टू अखिलेश, अंकल शिवपाल क्विट। और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में लिखा है कि लेट देम फाइट, यानी इनको लड़ने दीजिए। इस शीर्षक के तहत जो संपादकीय में इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है उसका लबोलुभाव ये है कि चाचा भतीजे की लड़ाई से पार्टी में वंशवाद से हटकर आंतरिक लोकतंत्र के लिए जगह बन सकती है
आंतरिक लोकतंत्र की वहां कुछ।
ये इंडियन एक्सप्रेस का ये मानना है, उनके संपादकीय में ये लिखा है। अब कितनी उसके लिए कितनी जगह बन सकती है ये तो देखने वाली बात होगी। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि नो पीस इन यादव परिवार, शिवपाल क्विट पार्टी पोस्ट गवर्नमेंट, नेताजी बैक्स वन ब्रदर, सीएम गेट्स एन अदर सपोर्ट। यानी जो शिवपाल प्रोफेसर राम गोपाल यादव अखिलेश का समर्थन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि शिवपाल को नेताजी का मुलायम का समर्थन अभी तक मिल ही रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने शिवपाल का एक इंटरव्यू भी अपने संपादकीय पेज पर छापा है जिसमें वो नेताजी के आदेश के पालन की बात बढ़ा रहे हैं, जैसा कि सभी जगह पर उन्होंने कहा भी था। इसके अलावा फैसल साहब, नवभारत टाइम्स की जो हेडिंग है उसके लिखा है अखबार ने कि शिवपाल ने चला ब्रह्मास्त्र, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, सीएम ने किया नामंजूर। और बात अगर जनसत्ता की जाए तो जनसत्ता की हेडिंग है और बढ़ी सपा की कलह, और भी कई खबरें अखबार ने छापी है, लेकिन एक इरफान का बड़ा दिलचस्प कार्टून अखबार ने जनसत्ता जिसमें अखिलेश यादव अपने दफ्तर में सिर पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, नीचे मायावती का वो बयान छपा है कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। वहीं एक साहब अखिलेश से पूछ रहे हैं कि क्या आपके यहाँ भी एक मार्गदर्शक मंडल नहीं बन सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए समीर आत्मज मिश्र।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और उत्तर प्रदेश के बाद रुख करते हैं भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर का, जहां जारी 2 महीने से ज़्यादा के कर्फ्यू और आम शहरियों की मौतों के बीच सत्तारूढ़ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद तारिक हमीद कर्रा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और साथ ही कहा है कि सरकार में शामिल बीजेपी वहाँ RSS का एजेंडा चलाने की कोशिश में है। तारिक हमीद कर्रा को वात्सल्य राय ने फ़ोन किया और पूछा कि उनके इस्तीफे की बात कितनी दुरुस्त है।
बिल्कुल सही खबर है। देखिए, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 28 जून 1999 में बनी थी। हमने जो ये जमात बनाई कुछ आइडियल्स के ऊपर बनाई थी, जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू को फैसिलिटेट करना विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान को डायलॉग टेबल पे ले आना। तीसरा, हमने ये किया था कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाया जाए बट अनकंडीशनली। हम 2015 तक उसी आइडियोलॉजी पे हम चलते रहे, लेकिन 2015 में जिस वक्त पार्टी ने एक रेडिकल जमात बीजेपी, जिसकी आइडियोलॉजी जो है वो गवर्न्ड बाय RSS है, उनके साथ जिस वक्त ये अलायंस हुआ उस पे मेरा मतभेद रहा और तब से मैं आज तक उसके ऊपर अपना, मुफ्ती साहब थे, महबूबा जी थी, उनको एक हिसाब से कहें तो रिक्वेस्ट भी करता रहा, वार्न भी करता रहा फॉर डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। जिस वक्त हमने देखा और स्पेशली इन 2 महीनों में प्रैक्टिकली यहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, पेलेट गन्स जो कि पूरी दुनिया में जिसको बैन लगा दिया गया हुआ है, उसका इस्तेमाल डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक प्रोटेस्ट का जो एक हक होता है, एजिटेशन का एक जो हक होता है, उसको आपने सलब कर दिया। वार्न भी किया कि आप अलायंस को तोड़ दीजिए, इसमें से बाहर निकलिए। हम ये है कि ईद की नमाज तक के ऊपर पाबंदी लगाई गई, पहली दफा ग्रैंड मॉस्क जो है वो ईद उल अजहा के वास्ते 197 साल के बाद बंद हुई हो गया है। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए तो हमने अपने जमीर की आवाज को सुनते हुए दोनों बेसिक मेंबरशिप फ्रॉम द पार्टी एज वेल एज मेंबरशिप फ्रॉम द पार्लियामेंट, उन दोनों से आज रिजाइन किए।
आपने जो अपनी लोकसभा की सदस्यता छोड़ी है, तो आपने क्या लोकसभा अध्यक्ष को भेजा है अपना रेजिग्नेशन या पार्टी को भेजा है?
पार्टी को भेजने की जरूरत नहीं, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली रिजाइन कर दिया है और स्पीकर साहिबा को मैं इन अ कपल ऑफ डेज अपना रेजिग्नेशन भेज रहा हूँ।
अब आपका अगला कदम क्या है?
अगला कदम अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये था कि हम यहाँ के लोगों के जो कत्लो गारत हो रही है हमारे लोगों की यहाँ पे, उसके खिलाफ हमने एज अ प्रोटेस्ट आज अपना ये इस्तीफा पेश कर दिया हुआ है। उसके बाद में देखेंगे हम अपने लोगों से बातचीत करके।
ये थे PDP के सांसद तारिक हमीद कर्रा, उनसे बात की थी वात्सल राय ने। BBC ने बीजेपी की राज्य इकाई से जानने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कहती है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तारिक हमीद कर्रा। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा से।
यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी PDP गठबंधन सरकार का है। इस सरकार से पहले लगभग 68 वर्ष में ये कह सकता हूँ कि दूसरी पार्टियों ने राज किया है। इस कश्मीर टर्मोइल की सभी जिम्मेवारी जो है उन पार्टियों के ऊपर आती है, उसमें कांग्रेस है, NC है, सर्वोपरि। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था जम्मू से और PDP को मिला था कश्मीर से। इन दोनों की गठबंधन सरकार बनती थी। एक वर्ष और 3-4 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, लेकिन जिस तरीके की डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तीनों खित्तों में, अपने आप में ये दर्शाती है कि ये सरकार डेवलपमेंट चाहती थी, लेकिन यहाँ की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां और अलगाववादी ये नहीं चाहते कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। अगर उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स को मद्देनजर नहीं रखता तो मैं समझता हूँ बात गलत है।
आपने लोगों के सेंटिमेंट की बात की, तारिक हमीद सेंटिमेंट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं ईद के मौके तक पर नमाज नहीं हो पाई, 197 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं अपने अंतरात्मा की आवाज पर ये इस्तीफा दे रहा हूँ।
वहाँ के वातावरण को 2%, 3%, मैक्सिमम 5% लोग जो हैं वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 95% लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ पर अशांति हो। आप जल्द देखेंगे वहाँ पर शांति का वातावरण जो है वो बनेगा।
जम्मू कश्मीर के BJP अध्यक्ष सत शर्मा।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ जंग तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक वो बाहरी मुल्कों पर हमला करने वाले गुटों को बर्दाश्त करने की अपनी पॉलिसी में बदलाव नहीं लाएगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत में ये बात बार बार साफ की गई है कि उन्हें बगैर भेदभाव के सभी चरमपंथी गुटों को निशाना बनाना होगा। वॉशिंगटन से ब्रजेश उपाध्याय।
अफगानिस्तान पाकिस्तान मामलों पर अमेरिका के विशेष दूत रिचर्ड ऑल्सन ने कहा है कि हाल के दिनों में हुई फौजी कार्रवाई में पाकिस्तान की कामयाबी काबिले तारीफ है, लेकिन उन्हें सभी चरमपंथी गुटों को निशाना बनाना होगा और सभी पनाहगाह खत्म करने होंगे। अमरीकी सेनेट की विदेश मामलों की समिति में अफगानिस्तान पर हुई बहस में ओबामा प्रशासन का प्रतिनिधित्व कर रहे ऑल्सन का कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की जंग तब तक नहीं खत्म होगी जब तक वो बाहरी देशों पर हमला करने वाले गुटों को बर्दाश्त करने की नीति में ठोस बदलाव नहीं लाते।
It will build regional stability, enhance its relations with its neighbors.
ऑल्सन कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान इन गुटों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो इससे इलाके में स्थिरता कायम होगी, पड़ोसी देशों और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो वो पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। अमरीकी सेनेट की विदेश मामलों की समिति अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात के लिए अक्सर पाकिस्तान पर उंगली उठाती रही है और कभी मदद में कटौती के जरिए तो कभी शर्तें लगाकर अपनी नाराजगी जाहिर करती रही है। माना जा रहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री और $30 करोड़ की मदद पर लगाई गई रोक उसी नाराजगी की वजह से है। रिचर्ड ऑल्सन ओबामा प्रशासन की तरफ से कई बार पाकिस्तान का बचाव करते रहे हैं और मदद में कटौती के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को उनके बयानों में भी कुछ हद तक निराशा दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पाकिस्तानी फौज के प्रमुख राहिल शरीफ से कम 50 बार उनकी बात हो चुकी है। कुछ सेनेटरों की राय थी कि पाकिस्तान भरोसेमंद साझेदार नहीं है और हक्कानी नेटवर्क का साथ देकर अफगानिस्तान में अमरीका के खिलाफ काम कर रहा है। ऑल्सन का यह भी कहना था कि कबायली इलाकों में पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई बेहद अहम है और उन्हें चरमपंथियों के सुरक्षित ठिकानों को खत्म करने में कामयाबी भी मिली है। अलकायदा के खिलाफ भी उन्होंने अमेरिका के साथ काम किया है।
I think there is a greater concern about taking on another fight when they already have a domestic terrorism issue that they are grappling with. So to some extent, I think
ऑल्सन कह रहे थे कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना कुछ हद तक इस वजह से भी है कि फौज ऐसे वक्त पर एक नई जंग नहीं शुरू करना चाहती जब वो पहले ही अंदरूनी आतंकवाद से लड़ रही है। ये क्षमता का भी मामला है, लेकिन 100% उसी वजह से हो ऐसा नहीं है। कई ऐसे हैं जो हक्कानी नेटवर्क का साथ दे रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि अफगानिस्तान में शांति राजनीतिक हल के जरिए ही कायम हो सकती है और उसके लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्ते जरूरी हैं। पाकिस्तान की शिकायत रही है कि वो चरमपंथ के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई करे उससे हमेशा और करने की उम्मीद की जाती है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलिहा लोधी ने अपने बयान में कहा कि दुनिया को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लड़ेगा। अमेरिका में जानकारों का यही मानना है कि पाकिस्तान की मौजूदा नीति में फिलहाल बदलाव के आसार नहीं हैं और नवंबर के चुनाव के बाद अब नए प्रशासन को ही इस मामले से जूझना होगा। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज, वॉशिंगटन।
और अब रुख करते हैं दक्षिण चीन सागर का। जापान ने ऐलान किया है कि वो विवादित दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में अपनी नौसैनिक गतिविधियां बढ़ाएगा। जापान ने कहा है कि वो अमरीकी नौसेना के साथ साझा निगरानी करेगा और अन्य क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ अभ्यास भी करेगा। जापान की रक्षा मंत्री ने इस मामले में वियतनाम और फिलीपींस को मदद देने की बात भी कही है। सुने पूरा ब्यौरा अमर शर्मा से।
विवादित दक्षिण चीन सागर में जापान अमरीका और क्षेत्रीय देशों की नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यास करेगा और संयुक्त प्रशिक्षण गश्ती दल के जरिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाएगा। जापान की नई रक्षा मंत्री तोमिमो इनादा का कहना है कि जापान दक्षिण चीन सागर के तटीय देशों की क्षमताओं को विकसित करने में भी मदद करेगा। वाशिंगटन में अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर से अपनी पहली मुलाकात से पहले तोमिमो इनादा ने यह बयान दिया है। विवादित क्षेत्र दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना अधिकार जताता रहा है, जबकि ब्रुनेई, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया जैसे कई देशों के वहां अधिकार को लेकर अपने दावे हैं। दक्षिण चीन सागर का क्षेत्र मछलियों से भरपूर है। इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस भंडार होने का भी अनुमान है। चीन लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर दावा करता है। इसमें मूंगे की चट्टाने और द्वीप भी शामिल हैं, जिन पर अन्य देश भी दावा करते हैं। जापान अमरीका का करीबी सहयोगी है। जापान विवादित दक्षिण चीन सागर में अधिकार जताने वाले कई अन्य देशों में शुमार नहीं है, लेकिन वो इस विवादित क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार पर अमेरिका की चिंताओं के साथ खड़ा है। पूर्वी चीन सागर में निर्जन द्वीपों को लेकर जापान का चीन के साथ अलग सीमा विवाद है, जिस पर दोनों देश अधिकार का दावा करते हैं। इनादा का कहना है कि चीन ने इस द्वीप के आसपास के इलाकों में अपने जहाज भेजकर जापान की समुद्री सीमाओं में घुसपैठ बढ़ा दी है। जापान की रक्षा मंत्री तोमिमो इनादा ने कहा है कि यदि दुनिया कानून के शासन को बदलने की कोशिशों को माफ कर देगी और सफल होने के लिए नियमों को तोड़ने मरोड़ने की छूट दे देगी तो इसके परिणाम वैश्विक बन सकते हैं। हालांकि इनादा ने कहा कि वे चीन के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र में और हवा में सुरक्षा बलों के बीच टकराव को रोकने के लिए वे वार्ता में तेजी लाएंगी। इनादा ने कहा है कि जापान वियतनाम को गश्ती नौकाओं की आपूर्ति करेगा और फिलीपींस को निगरानी विमान और 2 युद्धपोत देगा। चीन के साथ सीमा विवादों में घिरे देशों की समुद्रीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को पालन करवाने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जापान ने ये कदम उठाया है।
ये थे अमर शर्मा और अब खबरें खेल जगत से।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। सबसे पहले बात डेविस कप की। भारतीय टीम आज से नई दिल्ली में शुरू होने वाले डेविस कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबले में 5 बार की चैंपियन स्पेन से भिड़ेगी, जिसमें स्टार खिलाड़ी राफेल नडाल समेत विश्व स्तर के खिलाड़ी मौजूद हैं। स्पेन की टीम ये मुकाबला जीतकर एलीट विश्व ग्रुप में स्थान हासिल करना चाहेगी। विश्व ग्रुप प्लेऑफ मुकाबला हालांकि भारत के सिंगल्स खिलाड़ी साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन के लिए अच्छा मौका होगा, जिनके पास मिलाकर डेविस कप करियर के नाम पर सिर्फ 5 मैच खेलने का अनुभव है। साथ ही भारतीय टेनिस प्रशंसकों के लिए भी ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका होगा, क्योंकि उन्हें इस दौरान 14 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नडाल को खेलते देखने का मौका मिलेगा। भारतीय डेविस कप टीम के पूर्व कोच और सिलेक्शन कमेटी के सदस्य नंदन बल इस मुकाबले के बारे में कहते हैं।
देखिए, पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि इंडियन टेनिस फैन के लिए बहुत बड़ी बात है कि नडाल और फेरर दोनों भी आके खेलेंगे, तो ये तो पहली बात हुई कि इस लेवल का टेनिस हम बहुत सालों के बाद इंडिया में देखेंगे, तो दैट इज फैंटेस्टिक। दूसरी बात, जहाँ तक नडाल और फेरर का खेलने का सवाल है, तो मैं बहुत खुश होता अगर कोई इंडिविजुअल टूर्नामेंट खेलते, लेकिन जहां तक जिस कारण से वो आ रहे हमारे खिलाफ खेलने आ रहे, तो उससे बड़ा दुख होता है, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर इंडिया।
आज होने वाले मुकाबले में भारतीय सिंगल्स खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन राफेल नडाल के खिलाफ उतरेंगे, वहीं साकेत माइनेनी डेविड फेरर का सामना करेंगे। कल डबल्स मुकाबलों में लियांडर पेस कोर्ट पर उतरेंगे, वहीं मुकाबले के आखिरी दिन यानी 18 तारीख को सिंगल्स रिवर्स मैच खेले जाएंगे। आपको बता दें कि भारत कभी भी डेविस कप खिताब नहीं जीत पाया है। और अब बात भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की। 3 टेस्ट और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलने भारत दौरे पर आई न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आज से अपना इकलौता अभ्यास मैच खेलेगी। मुंबई के खिलाफ कीवी टीम का ये 3 दिनी मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज की शुरुआत 22 सितंबर से कानपुर में होगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम के खात्मे का वक्त है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं विश्व समाचार एक बार फिर से अमर शर्मा से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कल देर रात अखिलेश मंत्रिमंडल और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने सीरिया में 4 दिनों से संघर्ष विराम लागू होने के बावजूद मानवीय सहायता नहीं पहुंचा पाने पर गुस्से और बेबसी का इजहार किया है। राष्ट्रपति असद के सहयोगी रूस का कहना है कि सरकारी सैन्य बल एलेपो शहर जाने वाले महत्वपूर्ण मार्गों से हट गए हैं। अब इसकी संभावना बनी है कि तुर्की की सीमा पर इंतजार कर रहे संयुक्त राष्ट्र का सहायता काफिला विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी एलेपो में जा पाएगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनेशियो लुला डी सिल्वा ने अपने खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी और अभियोजकों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। लुला ने कहा कि उनके और उनके बाद राष्ट्रपति बनी डिल्मा रूजेफ के खिलाफ चलाया गया अभियान एक साजिश है। अभियोजकों ने कल कहा था कि लुला सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास में हुए भ्रष्टाचार के सरगना थे। अमेरिका से मिली रिपोर्टों के मुताबिक अधिकारी डॉयशे बैंक से 14 अरब डॉलर का भुगतान करने को कहेंगे। ये कार्रवाई साल 2008 में आए वित्तीय संकट के समय ऋण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा है। जापान की रक्षा मंत्री ने कहा है कि विवादित दक्षिण चीन सागर में जापान अमेरिका और क्षेत्रीय देशों की नौसेनाओं के साथ बहुपक्षीय अभ्यास करेगा और संयुक्त प्रशिक्षण गश्ती दल के जरिए अपनी गतिविधियों को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि जापान वियतनाम को गश्ती नौकाओं की आपूर्ति करेगा और फिलीपींस को निगरानी विमान और 2 युद्ध पोत देगा। बीबीसी समाचार।
अजीत सारथी ने एक बार फिर से संभाली थी स्टूडियो और दूसरी तकनीकी कामों की कमान। एक घंटे में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।